وإلى مدين أخاهم شعيبا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، فرمایا میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی معبود برحق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے. یہ نہیں ہم سوچتے ہیں کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے تو وہ تو سارے ہی کہتے ہیں، وہ تو اللہ کو مانتے ہی ہیں، کہتے ہیں ہاں ایک ہے کوئی. اب اس کو اللہ کہہ دیں، کوئی بھی نام لے دیں، کہتے ہیں ہاں ایک خدا ہے، تو بہت سارے کہتے ہیں. نہیں، معبود برحق کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ کہنا چاہیے. وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. اب پہلی بات جو تھی حقوق اللہ سے متعلق تھی، یعنی شرک نہ کرو، ایک الہ کو مانو، اس کی عبادت کرو. دوسری بات جو ہے وہ جس چیز کی انہوں نے ان کو تاکید کی وہ حقوق العباد سے متعلق ہے کہ تم لوگوں کو ناپ تول میں کمی نہ کر کے دو. یہ اس قوم کی بہت بڑی ایک بیماری تھی. ایک تو یہ بہت بڑی ایک سمجھ لیں کہ بزنس ہب تھا ان کے جو علاقہ تھا نا، یہاں پہ بڑی شہرت سمجھ لیں کہ ہائی وے تھی. اب اس ہائی وے سے قافلے گزرتے تھے اور آتے اور جاتے، یہاں پہ اپنی ٹریڈنگ کرتے تھے، تو ٹریڈنگ کی بہت بڑی ایک منڈی تھی، تجارتی منڈی سمجھ لیں کہہ لیں. اچھا، اب جب بھی تجارت ہوگی کچھ ناپا تولا جائے گا، کوئی چیز ناپیں گے کوئی تولیں گے، تو تم کم کر کے نہ دو. یعنی پیسے پورے پورے لے رہے ہو اور جب دینے لگتے تو کم کر کے دیتے. اپنے ویٹس اور اپنے سکیلز کو صحیح رکھو. انی اراکم بخیر، میں تمہیں دیکھتا ہوں خیر پہ. خیر کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ مال. مال کو بھی خیر کہتے ہیں نا، یعنی قرآن پاک میں ہے نا انہ لحب الخیر لشدید، انسان جو ہے مال کی محبت میں بڑا شدید ہے. تو میں تو تمہیں مالدار دیکھتا ہوں، اچھے بھلے تمہارے پاس پیسے ہیں، تم خوشحال ہو، تمہارے حالات اچھے ہیں، تو پھر کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہ جو کوئی غریب ہے اس کے لیے ٹھیک ہے وہ ناپ تول میں کمی بیشی کرے، مگر اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں، مگر خود تو تم اچھے بھلے ہو، مالدار ہو، پھر تمہیں ضرورت کیا پڑی ہوئی ہے؟ تمہیں ایسی کیا مجبوری آ گئی، کیا آفت آ گئی کہ تم ناپ تول میں کمی بیشیاں کرتے ہو؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ رچ قوم تھی، مالدار قوم تھی. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور میں تو دیکھتا ہوں تمہارے اوپر ایسے دن کے عذاب کو جو احاطہ کر لینے والا ہے، وہ دن گھیر لینے والا ہے، مجرموں کو گھیر لے گا، عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. اب وہ لوگوں کو وارن کر رہے ہیں. وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اب وہی بات پہلے منع میں کی، اب کیا کرو؟ قسط کے ساتھ کرو. جیسے آپ کو کہیں گے، آپ کہتے ہیں نا ڈرو نہیں بہادر بنو، ٹھیک ہے، یا آپ کہیں بے ایمانی نہ کرو ایمانداری سے چلو. اسی طرح ہے کہ پہلے کہا کہ ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، پھر اس کے بعد فرمایا پورا پورا دو، انصاف کے ساتھ دو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ کر کے دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ کرتے ہوئے پھرو. فساد کرنا یہ بھی ہے، چوری ڈاکا یہ بھی فساد ہے، یعنی اس کو بھی آپ فساد کہیں گے. لیکن فساد ایک یہ بھی ہے کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے کیسے آپ نے اس کا مال غبن کر لیا، کیسے آپ نے اس کے مال میں سے نکال لیا اپنا حصہ، بے ایمانی کے ساتھ غصب کرا اس کا مال، یا کسی کو بلیک میل کرنا، یا کسی ملاوٹ کر دینا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو بیچارے کو کیا پتا، وہ بھی فساد ہے. یہ فساد کی قسمیں ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنا بھی فساد ہے، چوری لوٹ مار کرنا بھی فساد ہے، ڈاکے ڈالنا بھی فساد ہے، اور کسی کو بلیک میل کرنا بھی فساد ہے، نقلی چیزیں بنا بنا کے مارکیٹ میں لے کر آنا فیک چیزیں، وہ بھی فساد ہے. یہ ساری صورتیں فساد کی ہیں، اسے زمین میں فساد پھیلتا ہے، بے ایمانی، چور، بازاری، برکتیں اٹھ جاتی ہیں. لیکن آج دیکھیں یہ والا کام کس قدر ہو رہا ہے کہ یعنی کسی جگہ پہ بھی آپ دیکھ لیں، الا ماشاءاللہ کہیں کوئی ایمانداری چل رہی ہے، آپ کسی قسم کے بھی تجارت اٹھا کے دیکھیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، ये फरमाया, यानी तिजारत में अल्लाह ने बरकत रखी है, तिजारत में वो खास तौर पे कहा गया, तिजारत सुन्नत भी है, लेकिन अगर तिजारत में इंसान बेईमानी करे तो फिर वो ये शुएब अलैहिस्सलाम वाली कौम का हाल वाला हाल है उसका। आज आप देखें, आप पेट्रोल डलवाने जाएं, उन्होंने उसके मीटर ही पीछे किए होते, 10 लीटर का आपने डलवाया लेकिन वो 10 का नहीं डला, वो तो डला तो 9 का था। इसी तरह आप गोश्त लेने गए, सब्जी लेने गए, उसके जो स्केल्स हैं, जो तोलने वाला जो आला है, उसकी सुई बड़ी तेजी से चलती है। आपको दिखाई दे रहा है कि आपने 2 किलो खरीदा है, लेकिन है असल में वो 1.5 किलो। गोश्त के अंदर पानी ऐसा डाल देना, उसको उसके सिरिंज लगा देना, उसको ऐसा वजनी कर देना, दूध में पानी मिला देना, कहीं दूध आप खालिस पा सकते हैं। शैंपू आप खरीद रहे हैं, उसके अंदर मिलावटें, बच्चों के दूध तक के अंदर चूना डाल के, पता नहीं क्या क्या चीजें डाल के, उसको उसमें भी खुदा खौफी नहीं। अब कैसे ये कम कम तोलना और कम नापना, और इसमें कैसे आता है? इस तरह से आता है कि जिसने आपसे खरीदा उसने तो उस दूध की प्राइस दी, मतलब 2 लीटर दूध लिया उसने, लेकिन उसमें 1.5 लीटर दूध था, बाकी आधा लीटर तो पानी था, या सूखा दूध है तो उसमें क्या मिला हुआ है? उस वो तो दूध की प्राइस दे रहा है ना। घी के अंदर मिलावटें, मिर्चों के अंदर ईंटें भर कूट कूट के उनको उसमें शामिल कर दिया, शैंपू की बोतलें, कई शैंपू को क्यों कहते हैं वो कि भाई हमने इंपोर्टेड शैंपू या इंपोर्टेड चीज के ऊपर क्यों लोग इतना भरोसा करते हैं? इसलिए उनको पता होता है कि बाहर के मुल्कों के अंदर ये चीज नहीं है, और हमारे मुसलमान जगहों पे, मुसलमान मुल्कों में कोई आपको चीज मिलेगी ही नहीं खालिस। ये उनका हाल है जो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में पढ़ के कहते हैं उनके ऊपर कितना बड़ा अजाब आया। और सिर्फ इस तरह की चीजों में नहीं, आप किसी प्रोफेशनल उसमें भी चले जाएं, आप मसलन है आप गाड़ी किसी मैकेनिक के पास देखिए, अब आपको तो पता नहीं है गाड़ी के अंदर क्या, उसने जो काम था 1,000 का उसको पेश कर दिया 2,000 का बना के। आपने अपने घर में कोई काम करवाना है, कोई प्लम्बिंग का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, अब आपको तो नहीं पता कि इसके अंदर क्या चीज है, उसने उसी काम को कितना बड़ा बना लिया, हालांकि वो एक तार ही जोड़नी थी। अब ये उसको पता है, आपको नहीं पता, उसने बेवकूफ बना दिया। ये फसाद है जमीन के ऊपर, मटेरियल कंस्ट्रक्शन में गलत लगा दिया, वो जो नंबर 1 क्वालिटी का कहा था उसने 2 नंबर क्वालिटी का लगा दिया, अगले दिन सड़कें बैठ गई, अगले दिन इमारतें गिर गई, क्या है ये? किस्त के साथ तो नहीं नाप तोल हो रहा। नाप तोल का मतलब आप ये ना सिर्फ समझे कि बस एक तराजू लेकर बैठा हुआ, वो नाप रहा तोल रहा है, हमें क्या, वो तो रेहड़ी वाला आएगा या किसी दुकान पे बैठा होगा, बस वो नाप तोल करता है। सब लोग करते हैं, एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो आपको जो टेस्ट आपके बनते भी नहीं है इजाफी टेस्ट लिख के दे रहा है। अब उसको पता है कि इसको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अपने पैसे उसने बनाने ना, कि उसने उस लैब से पैसे लेके रखे हुए या किसी और से पैसे लिए हुए, या उसका अपना कोई फायदा इसके अंदर हो रहा है तो वो और टेस्ट लिख देता है, या ऐसी कंपनियों की दवाइयां लिख के देता है जो कंपनियां उसको तोहफे तहाइफ देती हैं, रिश्वत दे रही हैं, वो रिश्वत है तोहफे नहीं है। ये सब क्या है? इंसान का पैसे पूरे पूरे लेना अपनी कंपनी से, और काम करना आधा टाइम, और आधा टाइम इधर उधर घूमना, आधा टाइम अपनी खबरें पढ़ना, आधा टाइम अपने बिजनेस को देना, जबकि वो तो पैसे दे रहे हैं उस सारे टाइम के जिसपे वो बैठा हुआ है। तो कहाँ कहाँ नहीं डंडी मारी जा रही, कहाँ कहाँ नहीं बेईमानियां हो रही। ये सब बेईमानियों के तरीके जो हैं, ये तबखा सुन्नास अशिया होम है, कमी करके देना लोगों को। अब इसकी एग्जाम्पल आप देख लें, हर तरफ है, हर तरफ है। गाड़ी कोई बेचने लगा तो उसका गाड़ी चलाई भी है, उसने 2 लाख मील है उसके ऊपर, उसने उसकी सुई पीछे कर दी और 1 लाख मील दिखा रही। अब जो खरीदने वाला है उसने कीमत किस गाड़ी की दी? 1 लाख जो चली हुई है, हालांकि वो 1 लाख नहीं चली हुई, वो तो 2 लाख चली हुई है। कमी की ना, कम करके दी ना उसको चीज, और ये फसाद ही फसाद है जमीन पे, इससे सुख और चैन नहीं आता। ये जो डंडी मारना या ये जो नापतोल में कमी बेशी करना या दो लोगों को धोखा देना या लोगों को ब्लैकमेल करना या नकली चीजें बाजारों में करना, उनसे क्या नुकसानात होते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप अपने माशरे में देख लें क्या नुकसानात। किसी को किसी पे भरोसा नहीं, लूट मार, नफसा नफसी, बेईमानी और हराम माल खाने की वजह से इंसानों के हालात क्या हो गए, उनकी बेहिसी देखें, और गुनाहों में कितना इजाफा हुआ और सेल्फिशनेस कितनी आई और लूट मार और महंगाई, ये सब इनाम है इस चीज के, नतीजे हैं। और लालच जो इंसान के अंदर आ जाता है, तो ये इंसानों के हकूक है कि जितना उनसे लिया जाए उतना ही उनको दिया जाए। जबकि आप देखें कि उलट हो रहा है, जितनी उनसे ली जा रही है उतना वो चीज उनको दी थोड़ी जा रही है। और आप देखें अल्लाह ताला ने सूरह मुतफ़िफ़ीन उतारी, वैलुल लिल मुतफ़िफ़ीन, मुतफ़िफ़ीन का इतना उनके बारे में बताया जो थोड़ी बहुत कमी बेशी, थोड़ा बहुत नाक तोल में कमी करते हैं, थोड़ी सी हल्की सी, उनके लिए भी वैल बताई, अजाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया ज्यादा करके दो, और यहाँ पे क्या हालात होते हैं। इसकी वजह से भी अल्लाह के अजाब उतरते हैं। तो ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का तरीका था। शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं, तुम तो खुशहाल हो, खुशहाल लोग हो, तुम्हारे पास दौलत की फरावानी है, क्यों हराम खाते हो फिर? कोई मर थोड़ी रहे हो कि हराम पे आ गए। बकियतुल्लाह खैरुल लकुम, बकियतुल्लाह अल्लाह का बाकी रखा हुआ जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है वो बेहतर है तुम्हारे लिए। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम ईमान लाने वाले हो, तो तुम ये देखो कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाया ना वो बेहतर है। नाप तोल में कमी बेशी क्यों करते हो, मत करो ये। यानी उनको एक तरगीब दिलाई कि तुम्हें क्या जरूरत है। और वाकई जो अल्लाह ताला ने जायज नफा रखा है ना वो बेहतर होता है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। बकियतुल्लाह का वो है, मतलब है कि जो आप माल पे एक जायज नफा भी तो होता है जो कमाते हो। ऐसे थोड़ी है कि कोई पूरा पूरा बेचता है या पूरा पूरा बस इधर से 10 की चीज ली तो 10 की बेची, 10 की लेगा 12 की बेचेगा। जो उसने $2 का जो है उसने उसमें नफा उठाया है वो बेहतर है, जो जायज है। किस तरह से बेहतर है? इन कुन तुम मोमिनीन, अगर मोमिन हो तो ये बात समझ आएगी ना, अगर मोमिन नहीं हो तो समझ नहीं आएगी। हम कहेंगे ये तो दो ही बनते हैं, इससे क्या फायदा, मैं बेईमानी करके तो इस चीज में मिलावट करके जब बेचूंगा तो चीज जो दो की ली है वो असल में एक की हो गई और आपने आगे जाके 3 की बेची। यानी आपने चीज की में मसलन दूध है, आपने उसके अंदर पानी मिला लिया, अच्छा पानी मिला के भेजा, उसको बढ़ा लिया। अब जो बढ़ा के आपने दूध बेचा है, आपने जो नफा उस पे कमाया है वो हराम है। अगर इसके ऊपर जायज नफा कमाते तो आपको $2 बनते, ना जायज नफा कमाने से आपके 3 बन गए। अब वो जो $3 बने हैं आपको तो नजर तो यही आ रहा है ना, ये ज्यादा है। आप कैसे कहते हैं कि जी वो बेहतर है, वो तो दो थे, वो कैसे बेहतर हो गए? ये 3 मुझे मिले हैं, ये मेरे लिए बेहतर है। जिसके अंदर ईमान नहीं है ना उसको वाकई 3 ही बेहतर नजर आएंगे, लेकिन जिसमें ईमान है ना वो कहता है नहीं 2 बेहतर है, इसलिए कि 2 में जो बरकत है ना वो 3 में नहीं होगी। वो 3 देखना कैसे कहीं जाया होंगे, कहीं अस्पतालों में, कहीं अदालतों में, कहीं कहीं कोई चालान हो जाएगा, कहीं कोई कोई और मसला हो जाएगा ऐसा कि वहां पे लगाना पड़ जाएगा, कहीं कुछ ना कुछ ऐसे उड़ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और वो जो 2 है ना उनकी जो बरकत है वो उसका अंदाजा नहीं आप कर सकते कि वो कितनी बरकत लेकर आएंगे। वो 2 10 को पूरे आ जाएंगे और 3 जो है वो 5 को भी नहीं पूरे आने। इसीलिए अगर लोग कहते हैं हमें पूरी नहीं पड़ती, पूरी नहीं पड़ती, पूरी कैसे पड़े, इसमें तो मिलावट हो गई हराम की। अम्मा अना अलैकुम भी हफीज, और देखो मैं तुम्हारे पर कोई निगेबान तो नहीं हूँ, कोई दारोगा तो नहीं कि मैं डंडे मार मार के सबको जो है ना ठीक कर दूं। उनका काम तो सिर्फ पहुंचा देना था ना। कालू, उन्होंने कहा, या शुआइबू, ए शुआइब। अब देखें जरा, नबी हैं उनके, उनमें भेजे हुए अल्लाह ताला ने, और उनका बात करने का तरीका क्या है, ए शुएब, और वो कहते हैं ए मेरी कौम, ए शुएब असला तो का तामुरु का, क्या तेरी नमाज तुझे ये हुक्म देती है किस चीज का, अन्नत रु का मा याबुदु अबाउ ना। अब उन्होंने दो बातें कही थी, पहली बात का जवाब दिया कि तेरी नमाज तुझे यही सिखाती है कि हम छोड़ दें जिनकी जिनकी इबादत करते थे हमारे बाप दादा, उनको हम छोड़ के एक इलाह को पूजने लगे, क्योंकि इब्राहिम शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि तुम एक इलाह को पूजो, या औ अन्नफ आला फी अम्वालिना मा नशाउ, या हम करें अपने मालों में जो हम चाहें, हम अपनी मर्जी भी ना करें जो हम कर सकते, हमारे माल हैं, हम अपनी जो मर्जी करें ये भी ना हम करें, ये सिखाती है तुम्हारी नमाज तुम्हें कि हम ये भी छोड़ दें जो हमारे बाप दादा करते थे, और जो हम अपने मालों के अंदर जो हमने खुद कमाए हैं उसमें जो जैसा हम चाहते हैं वैसा भी ना हम करें, वो भी छोड़ दें हम। यानी वो बता रहे हैं लोग नमाज का ताना दे के शुएब अलैहिस्सलाम को कि आपके कहने पे हम ये करने लग जाए, आपकी नमाज आपको ये सिखाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज कोई कहता ना, हाँ जी आपकी दाढ़ी आपको ये सिखाती है, हाँ ये बड़े हिजाब वाली हैं, हिजाब इनको ये सिखाते हैं, उनका अब कोई हिजाब से ताल्लुक भी ना होगा। अच्छा कोई अगर किसी को किसी बात से, गलत बात से मना करता है तो कहते हैं हाँ तो तुम दीन की तरफ बढ़े आगे, तुम्हारा दीन तुम्हें यही सिखाता है कि लोगों को जाके लेक्चर देते फिरो। तो फौरन उस चीज के ऊपर आगे, हालांकि नमाज का यहां पे कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, तुम्हारा हज उमरा तुम्हें यही सिखाता है। अब कितनी एक नबी के लिए देखें ताना मिलना, अब आप सोचते होंगे ना बाज दफा वो तो ठीक एक बात कर रहे थे, लेकिन बाज दफा हम लोग कोई गलत बात कर रहे थे तो फौरन कुरान का ताना मिलता है, कुरान पढ़ने वाले हो क्या, कुरान तुम्हारा तुम्हें यही सिखाता है, तो बददिल ना हुआ करें, कुरान से ना बददिल हो। हाँ वो गलत काम को तो जरूर छोड़ना है लेकिन कुरान से बददिल ना। बाज दफा ये होता है कि जैसे अब आपने यहाँ पे देखा लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, अपने घर वाले ना करीबी घर वाले वो दीन से दूर होते हैं, और उनको जब आप कुछ बात बताते हैं तो वो आपको फौरन कहते हैं लो क्या तुम्हारा दीन पढ़ना तुम्हें यही सिखा रहा है, तुम्हें यही बताता है, अब तुम हमें ये मना करना शुरू हो गई, तुम हमें लेक्चर देना शुरू हो गई। तो ये चीजें ही यहाँ पे बताई गई हैं कि वो लोग सारी बातें और छोड़ के उनकी नमाज के पीछे पड़ गए। इन्नकल अंतल हलीम और रशीद, बेशक तू तो बड़ा बुरदबार और रास्तबाज है, ये दोनों सेंस में बात हो सकती है, या तो ये कह रहे हैं कि तू तो बड़ा समझदार बनता है, बड़ा तहमुल वाला है, फिर तू भी इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, या फिर ये तंज हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि तू तो ठीक ठाक बनता है, बड़ा हिदायत वाला बुरदवार, तो तुझे क्या हो गया, तंज कर रहे हैं उनके हिल्म पे और रुश्त पे, बड़ा बना फिरता है तू समझदार, बड़ा बना फिरता है तू हलीम, तो फिर ऐसी बातें करता है। यानी तुम्हारा तहम्मुल बुराई के ऊपर होना चाहिए कि तुम बुराई को देखो और बुराई को बर्दाश्त करो, और तुम तो बड़े तहम्मुल वाले हो ना, तो बुराइयों पे तहम्मुल करना ये अंबिया का तरीका नहीं है। हमने जब तहम्मुल करना होता है ना तो गुनाहों के ऊपर तहम्मुल करते हैं, नहीं तो गुनाह पे तो दूसरे को बताना ही है ना कि ये गलत है। वो ये जवाब नहीं दे रहे कि हम तो हाँ नापतोल में कमी करते हैं, या हम क्यों करते हैं, या हम ऐसा कर रहे हैं तो ये कैसा काम है, बल्कि तेरी नमाज तुझे यही सिखाती है कि तू हमें ये बातें सुनाने लगे। उनका मतलब है कि तू जाके तो अपने अल्लाह अल्लाह कर, इबादत कर, हमें करने दे कारोबार, हम जैसे मर्जी अपने माल को कमाएं और जैसे मर्जी हम खर्च करें। वाला या कौमे अराई तुम इन कुंतु वाला बैयनत मिन रब्बी, एक मेरी कौम क्या तुमने गौर किया अगर मैं हुआ खुली दलील पर अपने रब की तरफ से, अगर मैंने हक को पा लिया अपने रब की तरफ से। वरज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना, और उसने मुझे रिज़्क़ हसना भी दिया, नबुव्वत भी दी और मुझे अच्छा रिज़्क़ भी दिया। तो वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन, तो मैं नहीं चाहता कि मैं खिलाफ करूं तुम्हारी तरफ उसके जिसको मैं रोकता हूं, तुमको जिस चीज से मैं तुम्हें रोकता हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं उसके खिलाफ खुद करूं, मैं जो तुम्हें कहूंगा वही मैं खुद भी करता हूं। मैं ये ऐसे नहीं करूंगा कि मैं खुद तो वो कुछ और कर रहा हूं और तुम्हें मना करता जा रहा हूं और खुद पता नहीं वहां से फायदा कमा रहा हूं। तो मैं ये नहीं चाहता कि जिन बातों से तुमको रोकूं फिर मैं उन्हीं की उसकी मुखालफत करूं। यानी उनको तो वो कह रहे हैं ना कि मीजान और मिकियाल को किस्त के साथ करो, इंसाफ के साथ करो, तो अब मैं तुम्हें कह के और मैं खुद इसके खिलाफ करने लगूं। ये भी अंबिया का तरीका रहा है कि वो अपने किरदार से साबित करते हैं कि जो चीज वो कहते हैं उसको करके भी दिखा रहे होते हैं। और उन रिस्क के हसना क्या है, जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से हैं वो रिस्क के हसना कि अल्लाह ने मुझे रिस्क दिए, इसमें उनकी शुक्रगुजारी भी है, उनकी किरदार की बुलंदी भी है कि उनका किरदार कैसा था, जैसे एक नबी का किरदार होता है। और ये भी जो मैंने पहले आपको बताया था, पिछली दफा भी बताया था कि इन कुंतु अला बय्यिनत मिन रब्बी, पहले पैगंबर ने भी ये कहा और अब ये भी यही कह रहे हैं। तो मैं फिर अगर मैं ही, मुझे अल्लाह ताला ने हक दिखा दिया है, मैंने हक को पा लिया है, मैं खुली दलील पर हूं, फिर मैं, यानी एक बात यहाँ पे समझ लें कि अंडरस्टूड है कि फिर भी मैं वही काम करूं, गलत काम करूं, तो क्या फायदा फिर ऐसा। इन उरीदु इल्ल इस्लाह, नहीं मैं चाहता मगर इस्लाह, मुझे तो सिर्फ, मुझे तुमसे कुछ और लेना थोड़ी है, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी इस्लाह चाहिए। मस्तता तो कि मैं तुम्हारी इस्लाह करना चाहता हूँ जितनी मैं इस्तात रखता हूँ, वमा तौफीक इल्ला बिल्ला, और मुझे कोई तौफीक नहीं है मगर अल्लाह ही की दी हुई तौफीक है, मेरी अपनी नहीं है ये कोई तौफीक। अब इसे देखिए ना कितनी आजी है, ये अल्लाह ताला ने जो भी मुझे हिम्मत दी या जो मैं तुम्हें दावत का काम कर रहा हूं या मैं जो तुम्हारी इस्लाह के लिए काम कर रहा हूं अपनी इस्तात के मुताबिक, ये भी अल्लाह ही की तौफीक है। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि अनीब, मैं उसी पे भरोसा करता हूं और उसी के तरफ मैं रुजू करता हूं। इंसान को पलटना बार बार अल्लाह ही की तरफ चाहिए, उन्हीं होता है जो बार बार पलटने वाला। और यहां से पता चला कि देखें जब हम किसी को तबलीग करें ना, तो हमारे सामने उसकी बुराइयां करनी ना हो, नहीं, हम तो उसकी भलाई कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ये उसके अंदर बुराई है, आपकी क्या मकसद उसकी इसलाह करना है या बस उसकी बदगोइयां करना है हर जगह बैठ के। अगर उसकी बदगोइयां हर जगह करना बैठ के तो फिर तो गीबत है, अगर उसकी इसलाह करना मकसद है तो फिर उनको बताया जाए और फिर इसलाह वाकई खैर ख्वाही के साथ हो सकती है, किसी की हर जगह बुराइयां करके नहीं हो सकती। इसलाह का मतलब यह कि इंसान वाकई किसी के लिए भला सोचे, उसका भला चाहे, चाहे कि वो सीधे रास्ते पे आ जाए, चाहे कि वो अपनी गलत कार्यां छोड़ दे, ये हमारा ज्यादातर मतमा नजर नहीं होता, बस उसकी उनकी बुराइयां करना होता है कि वो देखो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, लेकिन हमने उनकी इसलाह का कितना सोचा। तो जो अल्लाह वाले होते हैं वो क्रेडिट भी फिर देखें अल्लाह ताला को देते हैं खुद ने, कि हाँ देखो मैं कितना अजीम काम कर रहा हूँ, ये मेरा काम बहुत बड़ा है, नहीं, वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला, हमें भी जब कोई नेकी का काम करे यही कहना चाहिए मेरी तौफीक से नहीं। और वाकई इंसान अपनी हिम्मत अपनी ताकत से कोई नेकी नहीं कर सकता। अब देखें मिसाल के तौर पे आप सोचते हैं मैं कल रोजा रखती हूँ, अब आपने रोजा रखने का सोच लिया, सुबह उठी तो आपके सर में दर्द बुखार हो गया है, अब आपकी क्या तौफीक है। आपने सोचा मैं नमाज के लिए खड़ी होती हूँ, नमाज करने पढ़ने की हिम्मत ही नहीं आ रही, हिम्मत ही नहीं हुई उठने की, तो तौफीक तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है, अल्लाह की मदद होती है, वरना मैं और आप जितने मर्जी प्लान बना लें, जितने मर्जी प्रोग्राम कर लें, वादे कर लें, अपने आप से खुद को नहीं कर सकते। तो फिर जब नेकी हो भी जाए तो फिर भी अल्लाह ही की तरफ उसको लौटाएं। ये इतने बड़े पैगंबर हो के भी यही कह रहे हैं, वो अपने आप को बड़ी चीजें नहीं कह रहे, हम छोटे छोटे काम करके भी वो खुद ही बस समझते मैं कितनी है, मैंने कितना जबरदस्त काम किया। और भरोसा लोगों पे नहीं, अल्लाह पे, अल्लाह ताला पे भरोसा, कि वो ही है जो उसने मुझे थामना है, वो ही है जिसने मुझे आगे लेके चलना है, उसी की तरफ मैं बार बार पलटूंगा अपने हर गम और दुख में। अब इतना वो परेशान कर रहे हैं और इतनी बातें सुना रहे हैं और इतने तंज कर रहे हैं और नमाजों के ताने दे रहे हैं, बहुत से लोग हैं जिनको नमाजों के ताने मिलते हैं लोगों, कोई उनको मुसल्ली कहता है, कोई कहता है मुल्ला की दौड़ तो मस्जिद तक, कोई कुछ कहता है कुछ कहता है, कोई दाढ़ी का मजाक उड़ा के कहता है, कोई हिजाब का मजाक उड़ा के उनके ताने देता है, तो फिर इंसान क्या करे? मुनीब, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना, बार बार उसी की तरफ पलटना, उसको अपना दुख कहना। अच्छा, आप कोई भी नेकी का काम करेंगे ना, जिसमें भी आप थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, फौरन कुछ लोगों को जिनको आप कि ये नेकी चुभ रही होती है, वो उसका ताना देने लगते, उसको पिन पॉइंट करने लगते हैं कि तुम तो बड़ी ये बात करती हो, तुम तो बड़ी ऐसी हो। इसीलिए लोग डर के मारे फिर लोगों को बुराई से नहीं रोकते, क्योंकि उनसे ये बातें फिर सुनी नहीं जाती। या कौम ला यजरिमन्नकुम शिकाकी, ए मेरी कौम, मेरी मुखालफत, मेरी जिद, मेरे से जिद जो है ना, ये कहीं तुम्हें इस पे आमादा ना करे। किस पे? अन युसीबकुम मिस्लु मा असाबा कौम नूह, जिके तुम्हें पहुंचे उनकी तरह जिन जिनको जैसे पहुंचा है कौम नूह को और कौम हूद को और कौम साले को। यानी ये ना हो कि मेरी मुखालफत करते करते तुम इस पॉइंट पे पहुंच जाओ कि तुम अपनी इसलाह ही ना करो और तुम हठधर्मी से वही काम करते जाओ और उसी अंजाम तक पहुंच जाओ जिस अंजाम तक वो लोग पहुंचे जो नूह अलैहि सलाम और हूद और सालेह अलैहि सलाम की कौमें थी। तो ये ना हो कि देखिए, बाज दफा ना आप किसी की जिद की वजह से वो काम नहीं करते। मिसाल के तौर पे आप कोई आपको हिजाब का कहता रहता है, हिजाब का कहता रहता है, आप कहती बस मुझे इतना कह दिया ना, अब मैंने बस करना ही नहीं है, मैंने नहीं करके देना। हो सकता है उसका तरीका सही ना हो, इसीलिए जो कहने वाले होते हैं उनको भी यही कहूंगी कि बाज दफा हम अंदाज ऐसा इख्तियार करते हैं कि दूसरा जो है वो चिढ़ जाता है। हमने चिढ़ाना नहीं है किसी को, कि ये ना हो कि हमारी बात की वजह से वो इतना चिढ़ जाए कि वो फिर वो उन्हीं कामों को जिद में करे कि मैंने तो नहीं अब ये छोड़ना। क्या तो हिकमत के साथ, बड़ी हिकमत जरूरी होती है इस काम में। बाज दफा प्यार का, बाज दफा नाराजगी, बाज दफा डांट, बाज दफा खामोशी, बहुत तरह से आपको लेकर चलना पड़ता है। ये नहीं कि हर टाइम आप एक ही तर्ज अमल को इख्तियार करें, ऐसे नहीं चलती तबलीग, ऐसे नहीं होती। इसलिए फिर लोग कहते हैं ना, तुम्हारा तो कुरान पढ़ना तुम्हें यही बद अखलाकी सिखाता है, तो तुम इतनी बद अखलाक हो गई। तो ऐसी नहज पे ना पहुंचे कि लोग फिर कुरान को ताना बनाए और फिर आपकी बदअखलाकी को उसके साथ जोड़े। यहां पे आप देखें, वो कहते हैं ये ना हो कि तुम मेरी जिद में आके कि ये हमें कहता है, ये हमें सुनाता है, या हमें ये सिखाता है, हम क्यों इसकी बात माने। अब वो इतने बड़े बड़े अपने आप को सरदार समझते थे और बड़े एलिटिस्ट थे, मैंने आपको बताया कि बहुत मालदार ये लोग थे। अब वो कहे ये हमें बताएगा, अब आके ये हमें सिखाएगा कि हमने कैसे कमाना है, इसको पता है, अब ये जाओ जाके तुम अल्लाह अल्लाह करो, हमें हमारे बताने करने दो, हमारे ये मामलात हैं बिजनेस के, तुम अब हमें सिखाओगे, तुम्हारी नमाज तुम्हें यही सिखाती है। तो अब देखिए ये चीजें बाज दफा लोग इसकी जिद में आके ना, और फिर वो कामों को और ही करते हैं ज्यादा। तो फरमाया ये ना हो मेरी जिद, मेरी मुखालफत तुम्हें इस अंजाम तक पहुंचा दे जिस अंजाम तक वो पहुंचे थे। वा मा कौम लूत मिनकुम बिबाईद, और कौम लूत तो तुमसे दूर भी नहीं, यानी इनसे जमाने में भी ज्यादा दूर नहीं थी। इसका मतलब ये सारी कौमें पहले गुजर चुकी थी, इनको इनके हालात पता थे कौम शुएब को, फिर भी बाज नहीं आ रहे थे। ऐसे हम अब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ के फिर आगे हमें पता है कुरान सच्चा है, हमें पता है ये सारी बातें सच्ची हैं, फिर भी हमने वही करना। उनको भी पता था ये सारी बात सच है और ऐसे हुआ है और इन लोगों के ऊपर अजाब आए थे और ये कौमें तबाह हुई थी, फिर भी नहीं माना। तो जमाने में भी दूर नहीं और जियोग्राफिकली भी दूर नहीं थी, इतना इलाका दूर नहीं था इन कौमों का। तुमसे कुछ अरसा पहले ही तो गुजरी है। वस्तगफिरू रब्बा कुम सुम्मा तूबू इलैह, इसका भी मीनिंग मैं बता चुकी हूँ। बख्शिश मांगो अपने रब से और तौबा करो उसकी तरफ। इन्ना रब्बी रहीम वदूद, मेरा रब बेशक बड़ा रहम फरमाने वाला, बार बार रहम करने वाला और वदूद है, वो रब मोहब्बत करने वाला है। जिस रब का नाम ही ये है कि वो मोहब्बत करने वाला है, फिर इंसानों तुम्हें क्या चीज है जो रोकती है उसकी तरफ पलटने से, क्या चीज है जो रुकावट बनती है उसकी तरफ लौटने से, उसके आगे तौबा करने से, उसके फरमा बरदार बनने से। वो रब नहीं है। अल्लाह ताला के नामों में कोई नाम ऐसा नहीं है कि जो, जैसे कोई नाम आप बता दें जिसका मीनिंग हो अजाब देने वाला, जिसका मीनिंग हो लोगों के ऊपर सख्ती करने वाला, सख्त लोगों के ऊपर शिद्दत करने वाला, लोगों के साथ वो टॉर्चर करने वाला, या ऐसे ऐसा कोई भी नाम नहीं। अल्लाह ताला की आती है ये बात कि वो शदीदुल इक़ाब है, वो सख्त सजा देता है, लेकिन सजा देने वाला और उसका एक नाम हो जाना उसकी उस सिफत की वजह से, वो नहीं है। हाँ रहीम आता है, रहमान आता है, वदूद आता है, करीम आता है। तो उसकी मोहब्बत का आलम क्या है कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक परिंदे के बच्चों को लेकर आए अपने रुमाल में डाल के। फरमाया कि ये परिंदे के बच्चे थे, ये मैं लेकर आया हूँ, और इनकी माँ जो है इनके ऊपर ऊपर उड़ती जाए, वो बेचैन थी ना कि मेरे बच्चे हैं, उड़ती जाए, और फिर उसके बाद उसने अपने आप को गिरा लिया इनके ऊपर, तो ये मैं वो लेकर आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माँ की मोहब्बत का तुम क्या कहते हो जो उसको अपने बच्चों से। आपने कहा इसमें तो कोई शक ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला है जितना एक माँ को अपनी औलाद से मोहब्बत। फिर उस औरत का वाकया आपको पता ही है कि जो जंग में अपना बच्चा खो दिया था, जिस बच्चे को देखती थी उसको पकड़ के दूध पिलाने लगती थी, सीने से लगा लेती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस माँ के बारे में क्या कहते हो। नबी अलैहिस्सलाम सिखाते थे ना हर एक सिचुएशन से लोगों को, इसके बारे में तुम क्या कहते हो, क्या ये अपने बच्चे को कभी आग में डाल सकती। साहब ने कहा कभी भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला कैसे फिर अपने बंदों को आग में डाले, यानी अल्लाह ताला नहीं चाहता कि वो अपने बंदों को आग में डाले, लेकिन बंदे ऐसे काम करते हैं कि वो अपने लिए खुद आग का सौदा कर लेते। तो वो उसको कोई शौक नहीं है बंदों को अजाब देने का, बंदों को आग में डालने का, बंदों को जहन्नमी बनाने का, ऐसा नहीं है। वो तो रहीम और वदूद है, रहम में शफकत है, दोनों सिफात के अंदर बहुत मोहब्बत है। और वुद में ना बेतहाशा ज्यादा चाहत का माना आता है, अडोर करना किसी को। कालू या शुआइबो, उन्होंने कहा ए शुआइब, मा नफकहू कथीरन, नहीं हम समझते बहुत सा, मिम्मा तकुलो जो तुम कहते हो, हमें तो समझ ही नहीं आती तेरी बातें कि तू तो कैसी बातें करता है शुएब। यानी हालांकि शुएब अलैहिस्सलाम इतने जिनको कहते ना कि जुबान के फसी और आर्टिकुलेट और बड़े खतीब, खतीबुल अंबिया इनको कहा जाता है, इतने जबरदस्त स्पीकर थे, लेकिन वो आगे से क्या कह रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना हमें तो समझ ही नहीं आती, ये समझ नहीं आती लोग क्या कहते हैं, कोई कहता है कब्रों के ऊपर जाओ, कोई कहता है नहीं जाओ, कैसे नहीं आपको समझ आती, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। हमें तो समझ ही नहीं आती कुरान की, हमें तो समझ ही नहीं आती इन चीजों की, दीन की, इन बातों की हमें समझ ही नहीं आती। वो इस तरह कह रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती, हालांकि क्या इतनी मुश्किल बात थी जो शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे थे। वह इन्ना लना रौ कफी ना दुआईफ, और हमें तो तू बड़ा अपने अंदर बड़ा कमजोर नजर आता है कि तू तेरे अंदर तो बड़ी कमजोरी है। असल में कौम उनको जाहिर मालदार भी बहुत ज्यादा थे उनकी कौम के लोग, और ये जिस्मानी तौर पे कमजोर थे, मगर इनके जो कबीला था ना उसकी वजह से वो लोग इनके ऊपर हाथ नहीं डालते थे। जिस्मानी तौर पे तो तुम तो अकेले ही हो, कमजोर हो, लेवलौला राहतु का ला रजमना का, अगर तेरा कुंबा ना होता तो हम तुझे संसार कर देते। तो वो ये भी कहा जाता है कि उम्र भी इनकी ज्यादा बढ़ गई थी, उम्र रसीदा भी हो चुके थे, तो इसलिए वो बड़े बड़े सरदार थे, उनकी अना पे हर्फ आता था कि ये हमें समझाते हैं। तो वो कहते हैं कि किस बेस पे आप हमसे बात कर रहे हैं, आपकी बातों में समझ ही नहीं आती, और वैसे भी आप कौन सा हमें बहुत कोई रिच आदमी है, को बहुत बड़े अमीर कबीर आदमी है, आप तो कमजोर से हैं। ठीक है, ये होता है ना, उनको ये कमजोरी लगती है जो हक के साथ खड़ा हुआ, और अकेले लगते थे क्योंकि इनके कबीले वाले सोच में तो इनके साथ नहीं थे, इनके अगेंस्ट ही इनका कबीला था, लेकिन वो चूंकि कबीले की सपोर्ट होती है, चाहे वो आदमी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं भी लाए थे कुरैश, लेकिन एक एक सपोर्ट उनके अपने कुंबे कबीले की तो थी। ममा अंता आलई ना भी आजीज, और ना तो कुछ हम पे भारी है, यानी या तुम तो हमारा कोई मुकाबला भी नहीं कर सकते, हमारी नजर में तो कोई तुम पे हम पे तुम्हारा हम पे कोई गलबा भी नहीं है। कौल या कौमी अरहती आजू अलैकुम मिन अल्लाह, मेरा कुंबे कबीले का तो तुम्हें डर है, अल्लाह का डर नहीं है क्या? मेरा कुंबा कबीला ज्यादा गलबे वाला है, ज्यादा जोर वाला है अल्लाह से भी, कि तुम्हें अल्लाह से नहीं डर लगता? अब देखिए ये डायलॉग जो चल रहा है ना, बिल्कुल एक नेचुरल उसके अंदर फ्लो में जा रहे हैं। वह तखस तुम वराकुम जिहरिया, और तुमने उसको बना लिया अपने पुश्त के पीछे, कि अल्लाह ताला की तो कोई परवाह नहीं है, उसको तो भूल गए, उसका तुम्हें कोई डर नहीं है। इन्ना रब्बी बिमा तामलून मुहीत, बेशक मेरा रब जो तुम अमल करते हो उसको घेरने वाला है। अय्या कौमी, और फिर आखिरी बात जो ये उस वक्त बात की जाती है जब हुज्जत तमाम हो जाती है, जब इंसान जब कोई नबी अपनी कौम से मायूस हो जाता है कि अब इन्होंने नहीं मान लाना। और या कौम अमलू अला मकानतिकुम, ए मेरी कौम तुम अमल करते रहो अपनी जगह पे, ठीक है, ये आखिरी फाइनल बात है, इन्नी आमिल, मैं भी अमल करने वाला हूँ, सौफ़ तआलमून, फिर आन करीब तुम जान जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा खुद ही, क्या मैयती ही आजाबुन, कौन है आता है उस पर एक अजाब, जो युखजी ही जो रुसवा कर दे उसको, वह मन हुआ काजिब, और कौन जो है जो झूठा है, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, आन करीब पता चल जाएगा। वरतकीबू इन्नी माकुम रखूंगी, और इंतजार करो, बेशक मैं तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूँ। अब जब अल्लाह ताला की तरफ से फैसला आ गया कि अब इनाफ हो गई है इनके साथ तबलीग, अब आप इनको वो फाइनल बात सुना दें, तो ये उन्होंने सुना दी। और उसके बाद वलम्मा जाए अमरुना, और जब आ गया हमारा फैसला, नजैना शुऐबन, हमने निजात दी शुऐब अलैहिस्सलाम को और उनके साथ जो ईमान वाले थे, बेरहमत मिन्ना, अपनी तरफ से रहमत के साथ, इसका मतलब है कि जो भी इंसान को फायदा पहुंचता है ना वो सरासर अल्लाह की रहमत होती है, ये जो उनका बच जाना था वो भी अल्लाह की रहमत से ही हुआ, और इसी से इंसान कयामत के दिन भी पार लगेगा। वा अखदतिल्लदीन तलमु सैहतु, और पकड़ लिया उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया, एक सैहा ने, एक चिंगाड़ ने, इनके ऊपर भी चिंगाड़ आई जैसे समूद पे आई थी। वह असबाहू फी दियारिहिम जाहदीनी, तो वो उनके दिल पाश पाश हो गए, फट गए दिल उनके सिर्फ उस चीख को सुन के, और वो अपने घरों में ऊंधे मुंह जहां थे वहीं पड़े रह गए, कहाँ गई उनकी कमाइयां, कहाँ गई उनके, कह रहे थे हम तो इतनी बड़ी चीज है, तुम क्या चीज होते, जयीफ से हो, हम में कमजोर से हो, तुम्हारे तो कबीले का हमें ना होता ख्याल, तो हमने तो तुम्हें रजम ही कर देना, इतने अपने आप को पावरफुल समझते थे, और उनको बातें नहीं समझ आती थी ना शुएब अलैहिस्सलाम की, अब देखो किधर गई उनकी तिजारतें, उनके माल और उनकी सब चीजें, जो भी जिस पे उनको बड़ा मान था। अपने घरों में ऊंधे मुंह गिरने वाले थे और कोई भी नहीं इनमें भी बचा। का अल्लम यगनो फीहा, गोया के वो बसे ही नहीं थे कभी, घरों को वीरान छोड़ के चले गए। अला बुअदल्लि मदियन कमा बाइदत समूद, मदियन के लिए भी बहुत दूरी है अल्लाह की रहमत से, जैसे समूद के लिए थी। समूद भी इनसे इलाके के एतबार से तो इनके करीबी थे, कामों में देखें एक जैसे ही थे ये सारे, शिर्क करना और कुफर की रविश इख्तियार करना और रसूलों को झुठलाना और बात मान के ना दी। तो एक दिन अल्लाह का फैसला आ जाता है, इंसान सोचता है कि नहीं ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी और कुछ नहीं होगा, और वो हक को झुठलाता रहता है अपने गलत कार्यों के आगे। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि एक दिन आएगा जब इनाफ हो जाएगा, मैं फिर सब खत्म कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला इन वाकयात से हमें इबरत लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हक के रास्ते पर चलने वाला बनाए, आखिरी दम तक सिराते मुस्तकीम पे चलने वाला बनाए और इसी पे मौत अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين